Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. Aye, hum sab Swami Ji ke Sri Charano mein pranam karte hain. स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। गत वर्ष स्वामी जी कठोपनिषद की दूसरी वल्ली के नचिकेता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो यमराज जी आज जो उत्तर देंगे उसका प्रवचन हम स्वामी जी के समक्ष श्रवण करेंगे और 31 अक्टूबर तक स्वामी जी का प्रवचन होगा। जय श्री कृष्ण।
ओम नारायण नारायण नारायण। अन्यत्र अस्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यति तद्वद्। सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का प्रथम अध्याय, द्वितीय वल्ली का 14वां श्लोक है। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में बालक नचिकेता ने प्रश्न किया था और उसका उत्तर भी प्रशंसा के साथ आचार्य यम ने प्रदान किया था। उसके बाद भी इस द्वितीय वल्ली के 14वें श्लोक में पुनः वो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इन दो प्रश्नों में मौलिक अंतर है। प्रथम प्रश्न सामान्य प्रश्न था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणिहि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रश्न के बिना ज्ञान को पाना संभव नहीं है। जब व्यक्ति को अपने अज्ञान का बोध होता है तो अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए व्यक्ति प्रश्न करता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट कर दी, लेकिन बीच में बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम ने प्रश्न का गंभीरतापूर्वक उत्तर देने की अपेक्षा वो प्रश्नकर्ता के और प्रश्न के संदर्भ में बहुत सुंदर सी बातें कहने लगे। प्रश्नकर्ता का जो मूल्य है और प्रश्न का जो विषय तत्व है ब्रह्म, उन दोनों के बारे में बहुत सी बातें कही उन्होंने। और यहां तक बोला कि तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है और जिसके बारे में प्रश्न कर रहे हो उससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। अब इस 14वें श्लोक में बालक नचिकेता ने बहुत गहरी बातें कही। शायद मेरे को लगता है इसमें दो शब्द हैं, यत् पश्यसि और अन्यत्र धर्मात्। उन्होंने प्रथम तीन पादों में ब्रह्म तत्व के बारे में जो ऊंची से ऊंची बात हो सकती है उसका प्रतिपादन किया और यत् पश्यसि कहकर अपरोक्ष ज्ञान, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, आप जिसका अनुभव करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बालक नचिकेता ने आचार्य यम के सामने रखी। हमारे जीवन में सात चीजें हैं, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक नाश और आनंदावाप्ति। पंचदशादि ग्रंथों में इसका बड़ा सविस्तर वर्णन किया है। सबसे पहली जो चीज है वो अज्ञान है, अज्ञान माने भगवान को हम नहीं जानते, आत्मा को हम नहीं जानते, बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। वो नहीं जानने का ही नाम अज्ञान है। और वो अज्ञान क्या करता है? अज्ञान एना आवृतम ज्ञान आवरण करता है। जहां पर भी अज्ञान है वो हमारे आत्मसत्ता को ढक देता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाए तो बादल का होना अलग चीज है और बादलों के द्वारा सूर्य का ढकना एक प्रक्रिया अलग है। इसलिए प्रथम जो व्यक्ति की अवस्था है वो अज्ञान, द्वितीय अवस्था आवरण है। और जब वस्तु ढक जाती है, सूर्य जब ढक जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। तो ये अंधेरा जो है ना विक्षेप है, हमेशा ही अंधेरा विक्षेप होता है। बादल विक्षेप पूर्ण नहीं है, बादलों का ढांकना भी विक्षेप पूर्ण नहीं है, अपितु बादलों के द्वारा सूर्य को ढके जाने के बाद जो अंधकार पैदा होता है, जो छाया पैदा होती है, वो विक्षेप पूर्ण है। इसलिए अज्ञान का आवरण और आवरण के द्वारा फिर विक्षेप पैदा हो जाता है। हम आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा हमारी ढकी है अज्ञान से, और उसके बाद फिर विक्षेप पैदा होता है। और वो विक्षेप माने हम शरीर को आत्मा समझते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, मालूम नहीं पड़ा, ढक गया अज्ञान के द्वारा, तो हम अपने आप को कुछ भी समझ लेते हैं। फिर ये अज्ञान से भ्रांति पैदा हो जाती है, और इस भ्रांति को ही विक्षेप बोला है। मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, ये सारी चीजें पैदा हो जाती। फिर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। राग, द्वेष, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, ये विक्षेप के अंतर्गत है। ये तीन अवस्था हमारे जीवन की बहुत अनर्थमूलक अवस्था है। और ये बिल्कुल एक आम आदमी के जीवन में भी तीनों चीजें बराबर बनी रहती हैं, लेकिन जब जीवन में थोड़ी क्रांति, थोड़ा सत्संग मिलता है, जब ये व्यक्ति अध्यात्म की तरफ मुड़ता है, तो उसके जीवन में चौथी अवस्था आती है जिसको बोलते परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है केवल श्रवणजन्य ज्ञान, अभी उसके अर्थ का बोध नहीं है, हमने देखा नहीं, केवल सुना है। हमने आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, स्वर्ग आदि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने शास्त्रों से, पुराणादि ग्रंथों से, हम अपने गुरुओं से, बड़े लोगों से सुनते हैं, लेकिन उसको अभी हमने देखा नहीं, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। अक्षना परम, आंख से जो परे हैं, अभी आंख उसके साथ जुड़ी नहीं है, ये परोक्ष ज्ञान। सुनने के बाद जो ज्ञान होता है श्रवणजन्य ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। और फिर उसके बाद हमारे जीवन में अपरोक्ष ज्ञान, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। परोक्ष ज्ञान श्रवण से उत्पन्न होने के बाद मनन आदि के द्वारा, श्रुति कहती है आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्याशितव्य। आत्मा का श्रवण करो, श्रवण करने के बाद फिर मनन, मन से, और मनन करने के बाद निरिध्यासन, निरिध्यासन के बाद फिर आत्मदर्शन। ये आत्मिक के बोध, ब्रह्मात्मिक के बोध, मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे अभी आप इस ब्रह्मास्मि माला का चिंतन कर रहे थे, तो ये परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष बोध हो गया। अब अपरोक्ष बोध के बाद फिर मोक्ष है। ये अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, ये दो जो हमारी अवस्थाएं हैं, ये साधन रूपा है। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, ये बंधन रूपा है। और मोक्ष रूपा दो अवस्थाएं हैं, शोक नाश और आनंदावाप्ति। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद जैसे सूर्य प्रकट हुआ, प्रकाश की किरणें फैली, सारा अंधकार मिट गया और अंधकार जन्य जो भय था वो भी समाप्त हो गया, आनंद आया। अब यहां पर मोक्ष की अवस्था भी ऐसी ही है, अज्ञान मिट गया अपरोक्ष बोध होने के बाद, शोक नाश। अब अपने से परी कोई चीज ही नहीं रही, न वस्तु को न पाने का दुख है और न पाने के बाद खोने का दुख है। संसार में जो भी रागादि जन्य जो शोक हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, इसलिए शोक नाश। क्योंकि शोक वही पैदा होता है जहां पर अपने से भिन्न वस्तु के बारे में हम कुछ सोचते हैं, अपने से अलग वस्तु के बारे में सोचते हैं, और अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि ये सब कुछ मेरी आत्मा है। आत्मे वेदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए शोक नाश और उसके बाद फिर आनंदावाप्ति, और वो जो आनंद की प्राप्ति है, ये आनंद की प्राप्ति ऐन्द्रिक संसर्ग जन्य विषय जन्य नहीं होती, निर्विषय निरिंद्रिय जो आनंद की अनुभूति है स्वतः स्फूर्त। इसलिए आत्मा को आनंद रूप बोला है। आप हमेशा श्रवण करते हैं ना कि आत्मा आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूपाय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रवण करते हैं हम लोग कि वो आनंद रूप है, आनंदम विज्ञानम ब्रह्म। तो वो जो आनंद है ना वो आत्मा का आनंद है, क्योंकि वहां आत्मबोध, व्यक्ति को आत्मबोध हुए बिना आत्मानंद का अनुभव संभव नहीं है। और अज्ञान की अवस्था में जो भी आनंद है वो सब इंद्रिय जन्य है, मनोजन्य है, बुद्धि जन्य है। एक बार आदमी बहुत अच्छे विचारों को पैदा करके भी आनंदित हो जाता है, आगे बैठता है, बहुत अच्छे अच्छे विचार जब उठने लगते हैं प्रसन्न हो जाता है आदमी। कई बार ऐसा होता है कि साधक कोटि का व्यक्ति है और आध्यात्मिक बहुत सारे विचार पैदा हो जाते हैं, तो आदमी गदगद हो उठता है, ओहो इतनी अच्छी बात मेरे मन में आई। तो ये बुद्धिजन्य आनंद है। कई बार संकल्प करके भी आदमी आनंदित हो जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये सोच के भी आनंदित हो जाता है, ये मनोजन्य आनंद है। चिंतन करके भी आदमी आनंदित हो जाता है, कोई बहुत अच्छा चिंतन करता है, चिंतन करते समय भी आदमी को आनंद का अनुभव होता है, वो चित्तजन्य आनंद है। और कई बार आदमी मैं हूं अमुक, ये अमुक मैं हूं ये सोच के भी आनंद का अनुभव करता है, ये मैं बन गया, ये मैं बनूंगा, ये मैं था, मैं अहंकार, अहंकार भी आदमी को आनंद प्रदान करता है। हम कुछ करता हो के भी आनंद का अनुभव करते हैं, हम कई बार अकर्ता माने नहीं करने के कारण भी हम आनंद का अनुभव करते हैं। ये सारे आनंद अहंकार जन्य। लेकिन एक बार आत्मबोध हो जाए तो आत्मबोध के बाद व्यक्ति जितने भी हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अंतकरण चतुष्टय, प्राण, ये सारे शरीर से बाहर के पदार्थ सबसे अलग अनुभव करता है और उसके बाद भी आनंदित हैं, वो बुद्धि से परे, वो मन से परे, इंद्रियों से भी परे हैं और उसके बाद भी आनंदित हैं, तो वो आनंद कौन होगा फिर? इसलिए वो आनंद जो है आत्मानंद, अतीन्द्रिय, वो अबौद्धिक, मन से परे, इसलिए उस आनंद को मोक्ष का रूप माना गया है। शोक नाश और आनंदावाप्ति, तो ये हमारे जीवन की सात अवस्थाएं हैं। तो इन सात अवस्थाओं में जो पंचम अवस्था, यहां बालक नचिकेता यत पश्यसि तद वद, वो कहना चाहते हैं कि केवल आप परोक्ष ज्ञान, आपकी पहुंच केवल परोक्ष ज्ञान तक हो तो आप केवल सुनी सुनाई बातें हमको सुनाओगे, और सुनी सुनाई बातें तो हम भी जानते हैं। बालक नचिकेता ये कहना चाहते हैं कि सुनी सुनाई बातें तो हमने भी बहुत सुनी हैं, और वही बातें यदि हम सुनते जाए तो हमको क्या फायदा होगा। इसलिए पहले तीन पादों में उन्होंने जो परोक्ष ज्ञान है उनको, जहां तक बालक नचिकेता की पहुंच है, जहां तक बालक नचिकेता को परोक्ष ज्ञान हो चुका है, वो सारी चीजें पहले तीन पादों में रखती। और जो अपरोक्ष ज्ञान जो गुरु के पास है, यत पश्यसि, आप जो देखते हैं, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो अपरोक्ष ज्ञान मेरे को सुनाए जो आपने देखा है। तो जो परोक्ष ज्ञान बालक नचिकेता को है वो कौन सा ज्ञान है, जो उस ज्ञान का विषय आचार्य यम को अपरोक्ष है और नचिकेता को परोक्ष है। और ये जो उच्च कोटि की ज्ञान आप नचिकेता कह रहे हैं, ये आत्म प्रदर्शन नहीं है, अपनी योग्यता दिखाने की भावना नहीं है, केवल जहां तक वो चल चुके एक वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन मात्र, माने उसके आगे गुरु मेरे को आगे बढ़ाते। क्योंकि गुरु को मालूम होना बहुत जरूरी है कि शिष्य कहां तक चल चुका है, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति मैट्रिक पास कर चुका हो और उसको पहली कक्षा में बैठा दे। यदि गुरु को मालूम ना हो कि ये व्यक्ति ऑनर्स किया है, हो सकता है कि उसको पहली कक्षा में कह हमें बैठा दे। इसलिए बालक नचिकेता मानो जहां तक चल चुके हैं, जहां तक पढ़ चुके हैं, जहां तक जान चुके हैं, वो अपने गुरु के सामने रख रहे हैं कि प्रभु मैं ये चीजें जानता हूं और इसके आगे की चीजें आप हमको बताइए। तो इन्होंने पहले जो चीजें कही वो बहुत ऊंची, और आपको वो बातें पढ़ करके ऐसा लगता है कि बालक नचिकेता तो सब कुछ जानते हैं उस तत्व के बारे में। जो आचार्य यम बालक नचिकेता को कहना चाहते हैं वो सारी चीजें तो बोल चुके हैं। इसलिए यहां केवल जानने की बात नहीं है, यहां केवल अपरोक्ष ज्ञान की बात है। यहां जानना नहीं चाहते हैं, उस जानने का जो विषय तत्व है उसका अपरोक्ष ज्ञान चाहते हैं। हमारे जीवन में तीन चीजें होती है, जानकारी, मान्यता और अनुभूति। जानकारी का मतलब होता है बहुत सारी जानकारियां, सूचनाएं, हमने देखा ज्ञान हुआ, सुना ज्ञान हुआ, इंद्रियों के द्वारा बहुत सारी चीजें हमने जान ली, सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं हमारे दिमाग में। और दूसरी चीज मान्यता, फिर उन चीजों में हम मानना शुरू कर देते हैं, कोई चीज गहरी हो जाती है, हम सुनते हैं वो कई बार चीज मान्यता बन जाती है, आस्थाजन्य, जहां श्रद्धा होती है वो चीज मान्यता में बदल जाती है। हम भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत सारी चीजें हम जान के उसको मानना शुरू कर देते हैं, श्रद्धा चले। लेकिन जिसको हम मानते जरूरी नहीं कि हमारी अनुभूति हो। अभी पहली बातें जो बालक नचिकेता कह रहे हैं वो सारी चीजें मान्यता की बातें हैं, सारी चीजें जो जानते हैं वो मान के बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा है परमात्मा, वो मान के बोल रहे हैं और वो अनुभूति में बदलना चाहते हैं। इसलिए अभी ये जो तीन पादों में जो बात कह रहे हैं, श्रवण करने के बाद जो आस्थाजन्य उनकी मान्यता है, जो मान चुके हैं वो बोल रहे हैं और उस मान्यता को अनुभूति में बदलना चाहते हैं। ये इनकी बालक नचिकेता की सबसे बड़ी विशेषता, और बालक नचिकेता के जीवन की यही साधन अवस्था, साधक अवस्था, ये मुमुक्षु अवस्था है। अब वो कितनी ऊंची चीजें जान के माना, उसको उन्होंने रखा अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत् पश्यसि तद्वद। सबसे पहले उन्होंने कहा कि धर्मात् अन्यत्र, वो तत्व जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, जिसको मैं जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, वो तत्व कैसे हैं, बोले धर्मात् अन्यत्र। भगवान शंकराचार्य जी ने उसका बहुत सुंदर अर्थ किया है, अन्यत्र धर्मात् शास्त्रीयात् अनुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्यश्च पृथग्भूतमित्यर्थः। हमारे जीवन में जहां भी हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं वहां तीन चीजें आ जाती हैं। यहां धर्म शब्द का प्रयोग यज्ञीय कर्मकांड के अर्थ में वेदेन प्रयोजनम उद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्म, जैमिनी का एक सूत्र है चोदना लक्षणार्थो धर्म, और इसी की व्याख्या की है मीमांसा न्याय प्रकाश में वेदेन प्रयोजनम उद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्म। वेद के द्वारा स्वर्ग कामो यजेत आदि, वेद के द्वारा स्वर्ग कामो उद्दिश्य स्वर्गादि का उद्देश्य करके और यज्ञादि कर्मों का विधान किया है, इसलिए यागादिरेव धर्म। यहां पर धर्म शब्द का अर्थ है यागादिरेव, और वो क्रियात्मक है देवत्वोद्देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ, हम देवताओं को उद्देश्य करके जो द्रव्य का त्याग करते हैं, इंद्राय स्वाहा इदम न मम, वरुणाय स्वाहा इदम न मम, तो हम देवताओं को सामने रख के जो द्रव्यादि का त्याग, त्यागात्मिका जो क्रिया है वो यज्ञ है, वो धर्म है। और भगवान शंकराचार्य जी ने इसके साथ और दो चीजें जोड़ी, क्योंकि जो कर्म है ना वो उपकरण और कर्ता के बिना संभव नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्ता के बिना कैसे कर्म होगा, ऐन्द्रिक कर्म हस्तादि व्यापार लेना देना समर्पण आदि जो भी क्रियाएं हैं ये कर्ता के बिना संभव नहीं है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने यहां कर्ता को भी ले लिया, कर्ता करने वाला, फिर उपकरण, उपकरण भी चाहिए, कर्ता जो है क्रिया करता है हाथ के द्वारा तो हाथ उपकरण हुआ, हम हवन कर रहे हैं तो हवन करने के लिए बहुत सारे उपकरण चाहिए, करण चाहिए, तो यहां उपकरण कर्ता और यज्ञीय क्रिया, और उस यज्ञीय क्रिया का जो फल स्वर्ग आदि। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा धर्म शब्द से आपको इतनी सारी चीजें लेना है, यज्ञीय क्रिया का कर्ता करण, इंद्रियां करण है, बहुत सारी चीजें वहां श्रुवा, श्रुवा का मतलब होता है जो आपके पात्र आदि जो है वो हवन की क्रिया, और उस हवन क्रिया का जो लक्ष्य है स्वर्ग। तो ये तीन चीजें आप ले लीजिए धर्म शब्द से। तो बालक ऋषिकेता ने कहा कि जो तत्व है ना, जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व, वो यज्ञीय कर्ता से भिन्न है, क्योंकि यज्ञीय कर्ता जो है वो अभिमान करता है, वहां अभिमान के बिना कर्म का संपादन संभव नहीं। आप जब भी कोई कर्म करते हैं तो कर्म के पहले संकल्प लेते हैं, और संकल्प के समय आप वहां लेते हैं समय देहाभिमान को प्रस्तुत करते हैं, मैं अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम, अमुक नामो अहम, अमुक वर्णो अहम, और ये वर्ण गोत्र जाति आदि जो धर्म है ना आत्मधर्म नहीं है, ये शरीर धर्म है, ये शरीर धर्म है, तो शरीर धर्म को आश्रित, शरीर धर्म का आश्रय लेके ही कर्म का विधान है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अलग कर्म है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, कुछ कर्म शूद्रों के लिए भी विधिमान है, और सारे देहादि अभिमान पुरस्सर है, इसलिए देहाभिमान पुरस्सर जो क्रिया का कर्ता जीवात्मा है, यह कहते उससे भी परे तत्व है वो, क्योंकि देहाभिमान से भी परे तत्व है, इसलिए धर्मात अन्यत्र माने ये अभिमान पुरस्सर कर्म करने वाला कर्ता, इसके उपकरण इंद्रियादि और बाहर के स्थूल स्व आदि उपकरण, और उससे जन्य जो अदृष्ट है, उससे जन्य जो स्वर्ग है, उससे भी आत्म तत्व ब्रह्म तत्व परे है, माने वो स्वर्ग नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि अक्सर आदमी सोचता है कि मैं मोक्ष को पाऊंगा, तो कई लोग तो मोक्ष का अर्थ स्वर्ग भी समझते हैं, कई लोग तो वैकुंठ भी समझते हैं, कई लोग साकेत लोक समझते, कोई गोलोक समझता है, लोक लोकांतर में, तो आप यहां सारी चीजें समझ लीजिए। धर्म शब्द से आप स्वर्ग आदि लोक सारे ले लीजिए, आप स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, जितनी भी क्रिया के द्वारा दूर देश में जाके पाए जाने वाले लोक लोकांतर हैं, सब आप धर्म शब्द से लीजिए। उससे परे हैं आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, कहीं जाके दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरे रूप में पाए जाने वाला तत्व वो नहीं है। और उसके जो उपकरण हैं, अब आप वैकुंठ लेंगे तो उसके जो उपकरण जो भी हैं, उसका जो करता, वो सारी चीजें। तो ये धर्म शब्द से बालक नचिकेता ने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि लोक लोकांतर ये जितने भी हैं वो वास्तविक वो तत्व नहीं है, वो हमारा आत्म तत्व नहीं है, वो हमारा ब्रह्म तत्व नहीं, और वो हमारे जीवन का लक्ष्य भी नहीं है। धर्मात् अन्यत्र। और यहां धर्म शब्द का अर्थ आप सुख विशेष भी ले लीजिए आप, क्योंकि यहां सुख शब्द का अर्थ जो आप स्वर्ग बोलते हैं ना, इसलिए सांख्य तत्व कौमुदी में लिखा, सांख्य दर्शन में सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग और उसके जो साधन, इसलिए लौकिक सुख का भी परित्याग, माने उच्चतर जो सुख है लौकिक और उसके साधन, उसका जो भोक्ता है, बोले उससे भी परे वो तत्व धर्मार्थ अन्यत्र। और जब वो धर्म से परे हैं तो अधर्मात् अन्यत्र, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहां अधर्म, अधर्म का कर्ता और उसके जो उपकरण, आप इसको भी आप उपलक्षण विधिया उसको ग्रहण कीजिए। तो बालक नचिकेता ने कहा उससे भी परे तत्व है वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को उपदेश करते हुए यही बात कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य। और वहां दोनों चीजें, धर्म शब्द से केवल धर्म नहीं, सर्वान् धर्मान् अधर्माश्च, धर्म अधर्म सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में हो, क्योंकि वो धर्म से परे तत्व है। वो तत्व जो है ना, जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म तो एक साधन है, बहुत यहां की चीज है, वो एक उपकरण है, करण है, वो उससे भी परे है। धर्मात् अधर्मात् अन्यत्र, अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, कृत और अकृत, कृत माने कार्य, अकृत माने उसका कारण। अब ये इनको ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कार्य कारण संघात जो हैं, आप भौतिक विधया, आप सामान्य व्यवहार में जिन चीजों का अनुभव करते हैं, कार्य कारण संघात, हमारे सामने दो चीजें होती हैं संसार के अंदर, दो ही चीजें हमारे सामने घटित होती रहती हैं, एक कारण और दूसरा कार्य। और कारण में भी हम तीन कारणों का अनुभव करते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। वेदांत में दो ही कारणों का विचार है, न्यायादि ग्रंथों में अलग अलग कारणों का विचार है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण।